पृष्ठ संख्या 79, अध्याय 6। शाम के झुटपुटे में दोनों हाथ फैलाए बसंती कुर्सी के बीचों बीच गोल गोल नाच रही थी और धीरे धीरे गाए जा रही थी, ओ ओ ओ ओ ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। दोनों हाथ फैलाए गाती हुई बसंती लगभग सारे कमरे में अंदर घूम जाती। बस बस गाओ नहीं, आवाज़ बाहर जाएगी, कोई सुन लेगा, दिनु ने कहा। कोई नहीं सुनेगा, यह तो फिल्म का गाना है। अब याद आया, तुमने देखी है, बड़ी अच्छी फिल्म है, उसमें बहुत रोना आता है। दिनु उसे देखता रहा। बसंती की आवाज़ खरज थी, न उसमें लोच न लय, लेकिन वह धुन पकड़ लेती थी। बीसियों बार सुनी धुने उसे कंठ हो गई थी, ओ ओ ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। फिर बसंती रुककर बोली, पृष्ठ संख्या 80। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, पर गाने बहुत अच्छे हैं। तुमने देखी है? कौन सी फिल्म? उसमें राह है, लड़की बीमार पड़ी है और हीरो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। दूसरे दिन जब वह उठती है ना, तो पता है क्या कहती है? राह का हाथ पकड़कर कहती है, तुम तो मेरे आदमी हो। बसंती खिलखिलाकर हंसती। वह लड़की बीमार है ना, उसका दिमाग खराब है, उसे याद ही नहीं कि हीरो उसे उठाकर अपने घर ले आया था। इतने में बरामदे में खुलने वाले दूर पार के किसी कमरे में से ट्रांजिस्टर बजने की आवाज़ आई। बसंती सुनते ही ठिठक गई। यह गाना भी मुझे आता है, श्यामा बीवी के घर सुना था। और धीरे धीरे दोनों हाथों से थाप देते हुए गाने लगी, जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे मुझको प्यार आया, बड़ी मुश्किल से। बसंती पहले से ही अधिक निश्चिंत महसूस कर रही थी, कभी गर्दन एक ओर झुकाती कभी दूसरी ओर को, दोनों हाथ फैलाए धीरे धीरे नाच रही थी। दिनों शंकित हो उठा था, सचमुच किसी ने सुन लिया तो? चुप कर बसंती, बस, उसने कड़क कर कहा। बसंती चुप हो गई और दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए बुदबुदाई, अच्छा बाबा, अब नहीं बोलूँगी। अब जो तू आएगा तो मैं पहले से ही मुँह पर कपड़ा बांध लिया करूँगी, पर तू घंटों बाहर रहता है, मैं क्या करूँ, दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। दिनू भी जानता था कि जब वह कमरे में आता है तो बसंती के लिए घंटों की चुप्पी के बांध टूट जाते हैं। कमरे के बीचों बीच खड़ी बसंती बोली, एक दिन गाते गाते मैं पकड़ी जाऊँगी। वह हंसती हुई दिनू की ओर देखे जा रही थी। फिर तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा साहिब, उसी वक्त मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बसंती उसकी ओर बढ़ाई और बड़े आग्रह से बोली, चल कहीं बाहर कमरा लेकर रहते हैं, यहाँ मैं सारा वक्त अकेली पड़ी रहती हूँ, मुझे छिपकर रहना अच्छा नहीं लगता। हम छिपकर क्यों रहें? पृष्ठ संख्या 81। तो घर से भाग कर जो आई है, तेरे बाप को पता चल गया तो वह तुझे चुटिया पकड़ कर घर ले जाएगा और तू खड़ा देखता रहेगा, कहकर बसंती हंसने लगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। फिर दिनू के साथ सटकर खाट पर बैठते हुए बोली, किसी दूसरी बस्ती में चलकर कमरा ले लेते हैं, वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। और यह कमरा? तेरे पास साइकिल जो है तो साइकिल पर आ जाया करना। यह नहीं हो सकता, बसंती खिलवाड़ में उसके बाल सहलाती हुई बोली, मान जा, मान जा मेरे प्यारे दिनू राम, मान जा मान जा। और उसके बाल बिखेरती हुई खिलखिलाकर हंसने लगी, देख तो अपनी सूरत, कैसा बंदर सा लग रहा है। दीनू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बसंती को अच्छा लगा, पर वह दीनू की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, पहले मेरे साथ बातें कर, मैं दिन भर गुमसुम पड़ी रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन दीनू का आग्रह बढ़ता जा रहा था, बस 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 पहले मेरे साथ बातें कर, तू तो बस एक ही बात जानता है, जब आता है मेरा आटा गूंधने लगता है। और वह खिलखिलाकर हंसने लगी, चुप कर, कोई सुन लेगा, दिनू ने कहा और उसे फिर बाहों में बांधने लगा। अब की बार जब फिर बसंती अपने को छुड़ाने लगी तो दिनू ने तड़ाक से कहा, तुझे लाया किस लिए हूँ? हर बार जब बसंती उसे रोकने की चेष्टा करती तो वह यही कहता, तुझे लाया किस लिए हूँ। इस घुटन भरे कमरे में बासी मैले कपड़ों के बीच बसंती को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कमरे के अंदर घुसते ही दिनू पर भूत सवार हो जाता था। वह यह भी न देखता कि दिन है या रात, अगर रोकने की कोशिश पृष्ठ संख्या 82 करो तो एक ही जवाब देता, तुझे लाया किस लिए हूँ। मेरा क्या है, तेरे कमरे में ही टट्टी पेशाब कर दूंगी, तू उसे साफ करते रहना। और बसंती खिलखिलाकर हंसने लगी। जब से बसंती इस कमरे में आई थी वह केवल 2 बार ही पौ फटने से पहले कमरे से बाहर निकल पाई थी। बाहर मैदान में दिशा पानी भी कर आई थी और नल पर ठंडे ठंडे पानी से मुंह हाथ भी धो आई थी और उसे बड़ा अच्छा लगा था। और बसंती नाचती हुई कमरे में लौटी थी। दिन चढ़ जाने पर उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते थे, वह खिड़की में से झांक तक नहीं सकती थी। कमरे के बाहर पैर रखना तो दूर रहा, पर यह तभी था जब उसकी नींद पोफटने से पहले अंधेरा रहते खुल जाए। दिनू तो बसंती को जगाने से रहा, वह स्वयं तो घोड़े बेचकर सोता था और सूरज चढ़ने पर जागता था। बसंती अपने मैले कपड़े अभी तक नहीं धो पाई थी। दिनू से तो इस बात की आशा नहीं की जा सकती थी कि वह बसंती के कपड़े छुएगा। बसंती उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके साथ सटकर बैठ गई। आज मुझे भोली बहुत याद आई, बसंती बोलने लगी। तू भोली को नहीं जानता? वह मेरी सहेली थी। जब हम ढलान पर रहते थे, जब घर टूटे तो कुछ दिन पहले ही उसका ब्याह हो गया था। तुम्हें मालूम है, जिस दिन बस्ती टूटी उसी दिन मेरा भी ब्याह होने जा रहा था, पर पुलिस वाले बस्ती तोड़ने आ गए इसीलिए ब्याह नहीं हुआ। जानता हूँ जानता हूँ, बहुत बार सुन चुका हूँ, पर तू भोली को तो नहीं जानता ना? भोली का घर वाला उसे बहुत पीटता था, शराब पी लेता और पीटने लगता। हमारे आदमी अच्छे नहीं हैं, कच्ची शराब पीते हैं। उसे भी कहता था तू भी पी, पर उसे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी नहीं लगती तो कोई क्यों पिए? कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। फिर जब वह ज़्यादा पी लेता तो उसे पीटने लगता। तुम तो शराब नहीं पीते हो ना? बसंती को इस बात का भी गर्व था कि उसका पति शराब नहीं पीता। दिनू ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। एक दिन जी कच्ची शराब का 1 किलो का टिन वह कहीं से उठा कर ले आया। पृष्ठ संख्या 83। अपने एक दोस्त को भी पकड़ लाया। दो आदमी सारा का सारा टिन पी गए। फिर जी पीकर आपस में लड़ने लगे। पीकर हमारे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत झगड़ते हैं। बेचारी भोली बीच में आकर उन्हें छुड़ाने लगी तो पता है उसके घर वाले ने क्या किया? उसे घर से निकाल दिया। अब उस बेचारी का क्या कसूर था? वह तो छुड़ाने आई थी ना। दूसरे दिन उठे तो एक की आंख सूजी हुई और दूसरे का जबड़ा सूजा हुआ, और भोली घर में ही नहीं, जाने कहाँ चली गई। भोली ने अच्छा ही किया ना जो भाग गई, पता नहीं अब वह कहाँ पर है। गहराते झुटपुटे में दीनू के दोनों हाथ पकड़े बसंती बतियाए जा रही थी। एक ही झटके से दीनू ने दोनों हाथ छुड़ा लिए और फिर बसंती को अपनी लपेट में लेने लगा। बसंती ने फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह तुम्हें क्या हो जाता है, रात प्रभात जब आते हो चिपटने लगते हो? बसंती हंसकर बोली, मुझे तो बड़ा गंदा लगता है, ना मैं नहाई न धोई। फिर मानो अपने आप से बातें करती बोली, मेरा बापू भी ऐसा ही था। मैं रात को इसीलिए बड़बड़ाती रहती थी, इसीलिए कुतिया की तरह बच्चे जनती रही है। मुझे बड़ा गंदा लगता है। पर जब दीनू फिर से उसकी ओर बढ़ा और बसंती उसे रोकने लगी तो दीनू तमक कर बोला, एक झापड़ दूंगा, तुझे लाया किस लिए हूँ? बसंती के हाथ ठिठक गए। बस इसी काम के लिए लाया है, और नहीं तो क्या? बसंती की आंखें फैल गई। यहाँ आने का मतलब बसंती की नज़र में वह नहीं था जो दीनू की नज़र में था। बसंती यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, अपने पति के घर आई थी। वह यहाँ अपने को गृहवधू समझ रही थी, पर दीनू की आवाज़ में रुखाई थी और क्रूर कामोत्तेजना। जिसके साथ ब्याह किया हो उसके साथ ऐसा नहीं बोलते। ब्याह किसने किया है तेरे साथ? तूने और किसने? भगवान के सामने सौगंध खाई है या नहीं? मेरी मांग में रंग भरा है या नहीं? मेरे बालों में फूल टाके हैं या नहीं? और ब्याह क्या होता है? पृष्ठ संख्या 84। तू पीछे पड़ गई थी तो क्या करता? तेरी जैसी तो यहाँ रोज मिल जाती हैं। बसंती के मन को धक्का लगा, उसके हाथ शिथिल पड़ गए और वह चुपचाप दीनू के चेहरे को देखती रह गई। इस पर दीनू की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। तू अपने को बीवी समझ बैठी थी? मैंने कहा समझती है तो समझती रहे, मेरा क्या जाता है। तू अपने को मेरा घरवाला नहीं समझता। दिनू चुप रहा। गहराते झुटपुटे में बसंती को लगा जैसे हल्की नीली झाँव वाली उसकी आंखें बसंती के चेहरे पर लगी हैं, और पहली बार बसंती कुछ नहीं जान पा रही है कि इस आदमी के दिल में क्या है। बोल दे, सोच क्या रहा है, कहेगा तो आज ही चली जाऊंगी। पहले दिन से ही कमरे के अंदर प्रवेश करने पर बसंती एक पत्नी की तरह व्यवहार करती रही थी। कोठरी में झाड़ू लगाती, दीनू के कपड़े संभाल संजो कर रखती। उसने पहले ही दिन खाट की रस्सी को कस दिया था। कोठरी में लौटने पर दीनू को भी अच्छा लगा था, घर का सा भास हुआ था। बसंती भी बन संवर कर जूड़ा बनाकर बैठी थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दीवार में लगे तख्तों पर उसने दीनू का सामान तरतीब से रख दिया था। बीड़ी, सिगरेटों के ठूंठ बुहार दिए थे। उसके लिए यह कोठरी अपने सुहाग का कमरा थी। इस बार जो दीनू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह कुछ नहीं बोली, बल्कि ज्यों की त्यों बनी रही, मानो उसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो। सचमुच दीनू की बिल्लौरी आँखों से कुछ पता नहीं चलता कि झूठ बोल रहा है या सच। एक बार फिर बसंती के मन में आया कि उसे अपने से धकेल दे, धकेल कर परे हटा दे, लेकिन फिर सहसा ही उसके दिल में ज्वार सा उठा। मेरे मन से तो यह मेरा पति ही है, मैंने तो इसे अपना पति ही माना है ना, पति मानकर ही इसके साथ आई हूँ। यह नहीं मानता तो ना माने, मेरे लिए तो यह मेरा घरवाला ही है। और इस भावावेश में बसंती के हाथ दीनू के बाल सहलाने लगे। इसने तो मेरे साथ भला ही किया है ना, मुझे अपने साथ ले आया, नहीं तो बापू तो पंडित बुला लाया था और लंगड़ा बारात ला रहा था। और बसंती के दिल में फिर दीनू के प्रति गहरे स्नेह का उद्गार उठा, जैसे दिल के अंदर कोई प्यार का सोता फूट पड़ा हो। पृष्ठ संख्या 85। थोड़ी देर बाद बसंती फर्श पर लेटी, अंधेरे में छत की ओर देखती रही, और साथ में लेटे दीनू ने करवट बदल ली थी और बसंती की ओर पीठ करके लेट गया था। बसंती हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। तू अपने को मेरा घर वाला नहीं समझता, बसंती ने दुलार से कहा। दीनू ने बिना करवट बदले लेटे लेटे ही कहा, मेरा ब्याह कब का हो चुका है। दीनू की पीठ पर रखा बसंती का हाथ कांप गया और वह उसी क्षण उठकर बैठ गई। क्या कहा? मेरा ब्याह हो चुका है, तूने बताया क्यों नहीं? बसंती ने डूबती सी आवाज में कहा, मैं क्यों बताता, तूने मुझसे पूछा था जो मैं बताता। कहाँ है तेरी बीबी? गांव में। कहाँ है तेरा गांव? पहाड़ पर, पठानकोट से रास्ता जाता है। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरा ब्याह हो चुका है? तूने मेरा साथ धोखा किया है। मैंने क्यों धोखा किया? तू तो मेरे साथ भागने पर तुली थी, शादी करने के लिए ही तो तेरे साथ भागी थी, या यूं ही भाग आई थी? मुझे क्या मालूम, तूने उस वक्त भी नहीं बताया जब भगवान जी के सामने तूने कसम खाई थी। बीवी बनती है तो बन रहा, मेरा क्या जाता है, बेशक यहाँ पड़ी रहा। हमारी जात के लोग दो दो ब्याह भी करते हैं, तीन तीन भी करते हैं। दीनू को वह घड़ी याद आई जब बसंती उसे खींचकर बरामदे में भगवान जी की तस्वीर के सामने ले गई थी और उसके बालों में फूल खोसती रही थी। उसे वह सब खिलवाड़ सा लगा था। उस वक्त वह बसंती को बाहों में भरने के लिए। पृष्ठ संख्या 86। मन ही मन छटपटाता रहा था। चांदनी के छिटके बरामदे में पास में खड़ी बसंती की देह से मादक सी गंध फूट रही थी, जिससे वह मतवाला सा हो रहा था। उसे याद करके अपना आग्रह भी अब उसे अटपटा सा लगने लगा था। यों जब से बसंती कमरे में आई थी, दीनू की आंखों के सामने कामुकता की धुंध सी छाई रही थी। इस धुंध में ना तो वह अपनी स्थिति को ठीक तरह से देख पा रहा था, ना बसंती की स्थिति को, ना ही देख पाने की इच्छा भी थी। एक छोकरी अपने आप उसकी कोठरी में चली आई और जब चाहो वह मौजूद है, न भाग सकती है न भागना चाहती है, उसे और क्या चाहिए। यह घर बसाने की सोच रही है, सोचने दो, मेरा क्या लेती है, देखा जाएगा जो होगा। कुछ मांगती नहीं, सारा वक्त हंसती बोलती रहती है, खाना हॉस्टल के किचन से आता है, मुफ्त का माल, मुझे और क्या चाहिए। यूं भी काम में चुस्त है, कभी काम करेगी तो दो पैसे कमाकर ही लाएगी, मेरे पल्ले से नहीं खाएगी। बसंती देर तक दीनू की पीठ पीछे बैठी रही। जीवन के बड़े बड़े सदमे एक क्षण में अपनी चोट कर जाते हैं, पर घटते समय कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, ना कसक, न दर्द, न छटपटाहट, तिरते से निकल जाते हैं। और इंसान अन्य मनस्क सवैसे का वैसा व्यवहार करता रहता है मानो कुछ भी ना हुआ हो। दर्द की टीसें तो बाद में उठती हैं। क्या नाम है तेरी घरवाली का? अंधेरे में अपने घुटनों पर ठुड्डी टिकाए बसंती बोली, रुक्मी। कितनी बड़ी है? क्या मुझसे बड़ी है? तुझसे बड़ी है, गोरी है। हाँ गोरी है। पहले तेरे पास यहाँ रहती थी? नहीं, वह गांव में रहती है। कितने बच्चे हैं तेरे? बच्चा कोई नहीं है। कोई बच्चा नहीं है? क्यों नहीं है? पृष्ठ संख्या 87। तेरी माँ के तो 7 बच्चे हुए थे, उसका एक भी नहीं हुआ? नहीं है। बसंती चुप हो गई। गांव में रहती है तो घास छिलती होगी, कुछ जानती समझती नहीं होगी। उसने सिनेमा कहाँ देखा होगा, बसों में कहाँ घूमी होगी, टेलीविज़न कहाँ देखा होगा। बसंती को गर्व का सा भास हुआ, मेरे मुकाबले में तो वह पास्कू भी नहीं बैठती होगी। तू उसके साथ नहीं रहना चाहता? क्यों? वह मेरी बीवी है। बीवी है तो उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? वह गांव में रहती है, मेरी माँ के पास। सहसा बसंती मन ही मन विचलित सी हो उठी, छटपटा कर बोली, तूने दूसरी शादी क्यों की है? दिनों ने पहले की ही तरह स्थिर निश्चेष्ट सी आवाज में उत्तर दिया, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तू मेरे साथ भाग आई है, मैंने मना नहीं किया। यह तो ठीक कहता है, बसंती ने कहा और फिर चुप हो गई। देर तक चुप बैठे रहने के बाद उसने लंबी सांस ली और फिर फर्श पर लेट गई और छत की ओर ताकने लगी। रात गहरा गई थी, चारों ओर गहरा मौन छाया था। हॉस्टल की सभी आवाज़ें भी धीरे धीरे शांत हो गई थीं। न कोई दरवाज़ा खुलता था, न कोई ट्रांजिस्टर बजता था, न कहीं नल की या बर्तनों की आवाज़ थी। दाढ़ी वाले चौकीदार की लाठी की भी खटकार अभी नहीं आ रही थी। पास में लेटे दीनू का सांस भी गहराने लगा था। तू उसे यहाँ ले आ, हम सब मिलकर रहेंगे। तेरी जात में दूसरा ब्याह कर सकते हैं ना? दीनू चुप रहा। मैं सब काम कर लूँगी, उसे सब कुछ सिखा दूँगी। तू उसे यहाँ ले आ, हम अलग से कहीं कमरा लेकर रह लेंगे। पर दीनू की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बसंती फिर से वही बात कहने जा रही थी जब उसने पाया कि दीनू गहरी नींद सो गया है और हौले हौले पृष्ठ संख्या 88 खर्राटे भरने लगा है। छत की ओर ताकते हुए रात बीतने लगी। बसंती की आंखों से नींद भाग चुकी थी। दीनू के हल्के हल्के खर्राटे और कमरे के अंदर घूं घूं करते मच्छरों की आवाज़ के अलावा चारों ओर चुप्पी छाई थी। बसंती देर तक उधेड़ बुन में लगी रही। कभी सोचती कैसी होगी इसकी बीवी, कहता है गोरी है। गोरी है तो एक क्या जानती समझती तो कुछ नहीं, केवल घास ही छीलना जानती है। दिल्ली में तो उसे रास्ता भी पता नहीं चले, सारा वक्त भटकती फिरे। मेरे साथ रहेगी तो मैं उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दिया करूँगी, घर में तो मेरी ही चलेगी। दीनू भी मुझसे ही कहेगा, यह काम कर, वह काम कर, इधर जा उधर जा, मैं साइकिल चलाना भी सीख लूँगी। दीनू की साइकिल तो है ही। फिर अचानक ही कहीं से गहरी हूक सी उठी और बसंती का सारा शरीर झिझोड़ गई। हरामी ने बताया ही नहीं कि उसके घर में बीवी है, और अनायास ही दो गर्म गर्म आंसू बसंती के गालों पर लुढ़क गए। बीवी है तो क्या, मैं इसके पीछे मारी मारी तो नहीं फिरूंगी। व्याकुलता की एक और लहर सी उठी और बसंती को झिझोड़ गई, अभी उठकर चली जाऊं, मगर कहाँ जाऊं? कहीं दूर टावर की घड़ी पर टन टन हुई। नींद अभी भी बसंती की आंखों से कोसों दूर थी। आज भी मेरे साथ वही कुछ होगा, जब पौ फटने लगेगी तो मुझे नींद आ जाएगी और फिर न दिशा पानी जा सकूंगी, न हाथ मुंह धो सकूंगी। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। आधी रात को दीनू अपनी खाट उठाकर बाहर ले गया था। कहने लगा, इधर बहुत मच्छर हैं, मैं बाहर मैदान में सोऊंगा। और पानी की सुराही भी अपने साथ बाहर ले गया था। आज क्या होगा, आज तो नींद आ ही नहीं रही है। आज जब घड़ी 3 बजाएगी तो मैं उठकर बाहर चली जाऊंगी और दिशा पानी से निबट कर अंधेरे ही अंधेरे कमरे में लौट आऊंगी। बाहर ठंडी ठंडी हवा तो बहती है, झिंगुरों और मेंढकों की आवाज़ें भी आती हैं। कभी तोतों का झुंड पर फड़फड़ाता और ची ची करता किसी पेड़ पर से उड़ जाता है। खुली खिड़की में से आसमान का छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा था। अभी तारे चमक रहे हैं और आसमान का रंग गहरा है। रात की स्याही जब कम होने पृष्ठ संख्या 89 लगती है तो आंखें बंद करके अगर फिर खोलो तो लगता है उजाला एक पलक और खुल गया है। पौ फटती है तो आसमान में धीरे धीरे लाल मिट्टी घुलने लगती है। पलक झपको तो और ज़्यादा मिट्टी घुल जाती है। रात का यह पहाड़ सबसे सुहावना होता है। तभी धीरे धीरे बसंती की आंखें मुनने लगी।